अनिवार्य प्रारंभिक कथन। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ भविष्य की बात नहीं करता,
हाँ, बल्कि हमारे आज के सबसे बड़े संकट मतलब जलवायु परिवर्तन उससे निपटने का एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता है।
बिल्कुल, किम स्टैनली रॉबिन्सन का 2020 का उपन्यास द मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर।
रॉबिन्सन का नाम साइंस फिक्शन में तो बहुत बड़ा है और उनकी खासियत यही है कि वो विज्ञान को समाज और राजनीति से बड़ी गहराई से जोड़ते हैं।
हाँ, जैसे उनकी मास ट्रिलॉजी में भी दिखता है, वो निराशा नहीं फैलाते बल्कि एक तरह का क्या कहते हैं व्यवहारिक आशावाद दिखाते हैं
कि हाँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद बेहतर दुनिया बना सकते हैं।
और द मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर तो शायद उनका अब तक का सबसे जरूरी काम है। इसे क्लाइफाई यानी क्लाइमेट फिक्शन कहते हैं
और कहानी भी 20-25 से शुरू होती है, मतलब लगभग हमारी दौर से। इसे आलोचकों के साथ साथ वैज्ञानिक और पॉलिसी बनाने वालों ने भी बहुत सराहा है।
तो आज हम इसी उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों का सफर और इसके जो मुख्य संदेश हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे।
और इसकी शुरुआत वो जो दिल दहला देने वाली है, कहानी हमें सीधे ले जाती है भारत, उत्तर प्रदेश,
जहाँ एक भयानक हीट वेव आती है।
हाँ, और ये सिर्फ तेज गर्मी नहीं है, ये गर्मी और नमी का एक जानलेवा कॉम्बिनेशन है। वैज्ञानिक इसे वेट बल्ब घटना कहते हैं।
मतलब ऐसी हालत जब पसीना निकलने पर भी शरीर ठंडा नहीं हो पाता, तापमान बढ़ता ही जाता है।
बिल्कुल, और सोचिए उसी वक्त बिजली चली जाए, एसी बंद, पानी मिलना मुश्किल,
कल्पना करना भी मुश्किल है। उपन्यास दिखाता है कि लाखों लोग मारे जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही क्रूर चेहरा है।
और इसी त्रासदी के बीच हम मिलते हैं फ्रैंक पेरी से। वो एक अमेरिकी सहायता कार्यकर्ता है
जो किसी तरह बच निकलता है।
हाँ, लेकिन ये अनुभव उसे पूरी तरह तोड़ देता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसमें व्यवस्था के खिलाफ एक गुस्सा भर जाता है।
उसका बचना, उसका ये ट्रॉमा, यहीं से कहानी की नैतिक जमीन तैयार होती है।
और जब दुनिया से कोई खास मदद नहीं मिलती तो भारत सरकार एक बहुत विवादास्पद कदम उठाती है।
हाँ, वो एक तरफा भू इंजीनियरिंग शुरू कर देते हैं,
मतलब जलवायु को बड़े पैमाने पर बदलने की कोशिश, जैसे ऊपरी हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव करना
ताकि सूरज की रोशनी कुछ कम हो, धरती थोड़ी ठंडी हो, जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो।
हाँ, लेकिन इसके अपने खतरे और सवाल हैं। खैर, इसी उथल पुथल के बीच कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु बनता है,
वो है मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर, भविष्य का मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र इसे पेरिस समझौते के तहत बनाता है।
मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, और काम बड़ा आदर्शवादी सा लगता है।
हाँ, कि भविष्य के नागरिकों और उन सभी जीवित प्राणियों के हितों की रक्षा करना जो बोल नहीं सकते।
लेकिन असल मिशन तो बहुत मुश्किल है, दुनिया भर के देशों और कंपनियों को मजबूर करना कि वो कार्बन उत्सर्जन बंद करें जल्दी और न्यायपूर्ण तरीके से।
और आज की दुनिया को देखते हुए ये लगभग नामुमकिन लगता है।
बिल्कुल, इस मंत्रालय की प्रमुख हैं मैरी मर्फी, एक अनुभवी आयरिश राजनायक, व्यवहारिक।
और यहीं से उपन्यास का मुख्य संघर्ष शुरू होता है, मैरी और उनके मंत्रालय के ऊंचे लक्ष्य एक तरफ
और दूसरी तरफ दुनिया की असलियत, मतलब शॉर्ट टर्म मुनाफे वाली अर्थव्यवस्था, देशों के अपने अपने हित, बदलाव को लेकर वो जो एक जड़ता है वो सब।
तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बातचीत, पॉलिसी, नई तकनीक और थोड़े सामाजिक दबाव से ये संकट हल हो पाएगा,
या फिर कुछ ज्यादा कठोर, ज्यादा विवादास्पद कदम उठाने होंगे, शायद ऐसे कदम जो नैतिक रूप से सही ना लगे।
कहानी इन्हीं दो रास्तों के बीच चलती है, खासकर मैरी और फ्रैंक, इन दो किरदारों के जरिए।
और इन किरदारों का सफर ही कहानी को आगे बढ़ाता है। मैरी मर्फी को ही देखिए, शुरू में वो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट हैं।
हाँ, मीटिंग्स करना, प्रस्ताव लिखना, बड़े लोगों को समझाना,
लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगता है कि ये काफी नहीं है, सिस्टम बहुत धीरे चल रहा है।
फिर उनकी जिंदगी में वो बड़ा मोड़ आता है।
हाँ, जब फ्रैंक पेरी उनका अपहरण कर लेता है। फ्रैंक जो भारत की हीट वेव का भुक्तभोगी है।
उसका इरादा मैरी को चोट पहुंचाना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बस चाहता है कि मैरी उसकी कहानी सुने, उस दर्द को महसूस करे जिसे ज्यूरिख के आरामदायक कमरों में शायद महसूस नहीं किया जा सकता।
और ये घटना मैरी को अंदर तक बदल देती है। वो जो पॉलिसी की सूखी दुनिया है और इंसानी दर्द है, उसके बीच का फासला जैसे मिट जाता है।
हाँ, वो समझ जाती है कि सिर्फ नियमों से काम नहीं चलेगा, उन्हें नैतिक रूप से धुंधले क्षेत्र में, मतलब ग्रे एरिया में काम करने के लिए तैयार होना होगा।
और यहीं पर वो मंत्रालय की एक गुप्त शाखा, ब्लैक विंग की बात आती है।
उपन्यास सीधे सीधे तो नहीं कहता, पर इशारा है कि शायद यही विंग पर्दे के पीछे से कुछ कट्टरपंथी पर्यावरण समूहों को मदद करती है, जो हिंसक तरीकों से कार्बन उत्सर्जन करने वालों को निशाना बनाते हैं। ये कहानी में एक गहरी नैतिक जटिलता ला देता है। क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसे साधन सही हैं?
और दूसरी तरफ फ्रैंक पेरी, वो जैसे उपन्यास की अंतरात्मा है।
बिल्कुल, भारत में जो उसने देखा उससे वो कभी उभर ही नहीं पाता। PTSD, अन्याय का एहसास, ये सब उसे खाए जाता है।
उसका मकसद बस इतना है कि ज्यूरिक्स में बैठे लोग उस दर्द को समझें जो दुनिया झेल रही है।
उसकी कहानी बहुत दुखद है, पर मैरी पर उसका बहुत गहरा असर होता है। वो उन लाखों पीड़ितों की आवाज बन जाता है जिनकी कोई नहीं सुनता।
एक बात और, इस उपन्यास में कोई एक विलन नहीं है।
सही कहा।
कोई एक बुरा इंसान नहीं, विलन तो पूरा सिस्टम है।
हाँ, जीवाश्म ईंधन पर टिका पूंजीवाद, उसे चलाने वाली कंपनियां, बैंक और हमारी अपनी छोटी सोच,
इससे लड़ाई और भी मुश्किल और असली लगती है।
और जैसे कोई एक विलन नहीं, वैसे ही कोई एक हीरो भी नहीं है। हाँ, मैरी और फ्रैंक तो हैं ही, पर उनके साथ कई और भी हैं। मैरी का सहायक बदीम, अंटार्कटिका में काम करने वाले वैज्ञानिक, नए आर्थिक मॉडल बनाने वाले बैंकर,
और यहाँ तक कि वो काली के बच्चे के गुमनाम कार्यकर्ता भी,
ये सब मिलकर एक तरह का सामूहिक नायक बनाते हैं। संदेश साफ है, इस संकट से निपटना किसी एक मसीहा का काम नहीं, ये सबकी मिलीजुली कोशिश से ही होगा।
रॉबिन्सन इसे किचन सिंक अप्रोच कहते हैं, मतलब हर संभव तरीका आजमाओ।
और उपन्यास की बनावट भी इसी बात को दिखाती है। कोई एक सीधी कहानी नहीं है, 100 से ज्यादा छोटे छोटे अध्याय हैं।
अलग अलग नजरियों से, कभी किसी की आप बीती, कभी वैज्ञानिक जानकारी, कभी दार्शनिक बहस,
यहाँ तक कि बाजार या कार्बन परमाणु जैसी चीजें भी अपनी बात कहती हैं। ये बहुत अनोखा है।
तो ये किचन सिंक काम कैसे करता है, कहानी आगे कैसे बढ़ती है?
हम देखते हैं कि मंत्रालय कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। जैसे आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया आता है, कार्बन कॉइन।
कार्बन कॉइन?
यस।
ये क्या है, बिटकॉइन जैसा कुछ
है? तो डिजिटल मुद्रा, पर मकसद एकदम अलग। इसे दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक मिलकर जारी करते हैं।
अच्छा,
और ये मिलता किसे है?
ये उन कंपनियों या देशों को मिलता है जो या तो कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं या हवा से कार्बन सोखते हैं।
अरे वाह, मतलब पैसे की परिभाषा ही बदल दी। ग्रह को बचाना भी अब आर्थिक रूप से फायदेमंद हो गया।
हाँ, इसे आप कह सकते हैं ग्रह के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग। जैसे मंदी में सरकारें पैसा डालती हैं अर्थव्यवस्था में, वैसे ही ये पर्यावरण बचाने में पैसा डालेगा। बहुत सालों की बहस के बाद ये आइडिया लागू होता है।
ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। और तकनीकी मोर्चे पर?
वहां भी जबरदस्त काम होता है। सबसे नाटकीय शायद अंटार्कटिका का प्रोजेक्ट है, ग्लेशियरों को बचाने का।
वो कैसे?
वैज्ञानिक और इंजीनियर बड़ी बड़ी मशीनों से ग्लेशियरों के नीचे जो पानी पिघल रहा है उसे वापस ऊपर बर्फ पर पंप करते हैं,
ताकि ग्लेशियर समुद्र में ना फिसलें।
हाँ, उनकी रफ्तार धीमी करने के लिए। ये प्रकृति की ताकत के सामने इंसान की हिम्मत का एक प्रतीक जैसा है। और उधर वो ब्लैक विंग और काली के बच्चे, वो क्या कर रहे हैं?
कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा नैतिक सवाल खड़े करता है। काली के बच्चे ड्रोन हमलों से बड़े बड़े जहाजों, कार्गो प्लेन को डुबो देते हैं,
जो ज्यादा कार्बन फैलाते हैं।
हाँ, वो वैश्विक व्यापार के प्रतीक हैं, जो कार्बन पर टिके हैं। वो जीवाश्म ईंधन कंपनियों के अधिकारियों को भी निशाना बनाते हैं।
क्या मंत्रालय इसमें शामिल है?
अपन यहां सीधे तौर पर नहीं कहता, पर इशारा साफ है कि मंत्रालय की ब्लैक विंग शायद उन्हें कुछ मदद, जैसे खुफिया जानकारी देती है। ये दिखाता है कि प्रगति सिर्फ शांति से नहीं आती, शायद हिंसक प्रतिरोध भी इसमें भूमिका निभाता है।
तो एक तरफ कूटनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग, और तीसरी तरफ
इको टेररिज्म।
सच में किचन सिंक है।
बिल्कुल, और समाज में भी बदलाव आ रहे हैं। जलवायु शरणार्थी बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्लाइमेट पासपोर्ट जैसे नए कानूनों की बात होती है।
हाफ अर्थ जैसे आंदोलन भी जोर पकड़ते हैं।
हाँ, कि ग्रह का आधा हिस्सा प्रकृति के लिए छोड़ दो। लोग कर्ज चुकाने से मना कर देते हैं। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती है।
तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकलता है? क्या दुनिया बच पाती है?
उपन्यास के तीसरे हिस्से में, करीब 20-30 साल बाद, हम देखते हैं कि हाँ, असर हो रहा है। कार्बन कॉइन सिस्टम का हिस्सा बन गया है। निवेश अब पर्यावरण के हक में जा रहा है।
और सबसे बड़ी बात,
हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आखिरकार कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानवता ने खुद को किनारे से वापस खींच लिया है।
तो क्या ये एक हैप्पी एंडिंग है? सब ठीक हो गया?
नहीं, पारंपरिक हैप्पी एंडिंग नहीं कह सकते। दुनिया कोई स्वर्ग नहीं बन गई है। असमानता है, जलवायु आपदाओं के निशान है, लेकिन हाँ, दिशा बदल गई है।
अंत में क्या होता है?
अंत में हम एक बूढ़ी मैरी मर्फी को देखते हैं, आल्प्स में घूमते हुए। वो पिछले दशकों के संघर्षों, नैतिक समझौतों, जीतों और हारों को याद करती हैं। दुनिया बदल गई है हमेशा के लिए, पर वो बच गई है।
ये जीत का जश्न नहीं है।
नहीं, ये भारी कीमत चुकाकर हासिल की गई शांति और राहत की एक गहरी सांस है। शायद हम एक ठीक ठाक एंथ्रोपोसीन में पहुंच गए हैं, मानव प्रभावित युग जो आदर्श नहीं पर रहने लायक है।
ये कहानी वाकई कई गहरे सवाल और संदेश छोड़ जाती है।
हाँ, अगर हम मुख्य बातों को देखें तो सबसे पहला है जलवायु न्याय।
हाँ, वो भारत की हीटवेव वाला हिस्सा दिखाता है कि कैसे सबसे कम जिम्मेदार लोग सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं, और हमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा।
बिल्कुल, कोई भी हल न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, हमारी मौजूदा आर्थिक व्यवस्था पर सवाल।
वो नव उदारवादी पूंजीवाद जो सिर्फ मुनाफे और ग्रोथ पर ध्यान देता है, पर्यावरण की कीमत नहीं समझता, रॉबिन्सन उसी को जड़ मानते हैं।
और कार्बन कॉइन उसी को बदलने का एक तरीका है। तीसरा, ये कि कोई एक जादुई हल नहीं है।
वही किचन सिंक अप्रोच, सब कुछ आजमाना होगा, कूटनीति, अर्थशास्त्र, तकनीक, सामाजिक आंदोलन,
और शायद वो नैतिक रूप से मुश्किल रास्ते भी।
और इसी से जुड़ा चौथा संदेश है, नैतिक दुविधाएं और हिंसा का सवाल।
हाँ, क्या अस्तित्व बचा ही के लिए हिंसा जायज है? काली के बच्चे की हरकतें डरावनी हैं, पर शायद उन्हीं की वजह से बदलाव तेज होता है। उपन्यास जवाब नहीं देता, सोचने पर मजबूर करता है
कि ज्यादा बड़ी हिंसा क्या है, एक जहाज डुबोना या एक ऐसी व्यवस्था चलाना जो लाखों को मार दे।
बिल्कुल, और आखिर में एक हीरो जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, नौकरशाही।
हाँ, मैरी मर्फी कोई एक्शन हीरो नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। उपन्यास धीमी उबाऊ लगने वाली मीटिंग्स और पॉलिसी बनाने के काम को भी महत्व देता है।
ये दिखाता है कि बड़े बदलाव के लिए संस्थाएं कितनी जरूरी हैं।
उपन्यास की शैली भी बहुत अलग है, वो छोटे छोटे अध्याय, अलग अलग आवाजें, तथ्य और दर्शन का मिश्रण।
हाँ, ये जलवायु संकट की जटिलता को ही दिखाता है। ये किसी एक इंसान की नहीं, पूरी मानवता की कहानी है, एक मुश्किल मोड़ पर।
तो ये हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ तकनीक का मसला नहीं, ये एक गहरा नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक मसला है।
और शायद उम्मीद यही है कि समाधान चाहे कितने भी जटिल क्यों ना हो, हमारी सामूहिक इच्छा, कल्पना और हिम्मत से ही संभव है। अनिवार्य समापन कथन, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।